आगे देखेंगे आई 26 में। वैस बवाना लिब्राहिम मकान अलबैत, और जबकि हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को काबा के मकान की जगह मुकर्रर कर दी, और इस शर्त पर के मेरे साथ किसी को शरीक न बनाना, और मेरे घर को तवाफ क्याम रकू सजदा करने वालों के लिए पाक रखना, और लोगों में हज की तैयारी कर दे, लोग तेरे पास पैदल भी आएंगे और दुबले पतले ऊँटों पर भी, और दूर दराज की तमाम राहों से आएंगे, अपने फायदे हासिल करने को आ जाएंगे, और इन मुकर्रर दिनों में अल्लाह का नाम याद करें इन चौपायों पर जो पालतू है, बस तुम आप भी खाओ और भूखे फकीरों को भी खिलाओ, फिर वो अपना मैल कुचैल दूर करें और अपनी नजरें पूरी करें और अल्लाह के कदीम घर का तवाफ करें। ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम हुरुमात इल्ला, ये है और जो कोई अल्लाह की हुरमतों की ताजीम, इसके अपने लिए इसके रब के पास बेहतरी है, और तुम्हारे लिए चुपाए जानवर हलाल कर दिए गए हैं बजुस इनके जो तुम्हारे सामने बयान किए गए, बस तुम्हें बुतों की गंदगी से बचते रहना चाहिए और झूठी बात से भी परहेज करना चाहिए। हुनफा लिल्लाहि गैर मुशरिकीन नबी, अल्लाह की तौहीद को मानते हुए इसके साथ किसी को शरीक ना करते हुए, सुनो अल्लाह के साथ शरीक करने वाला गोया आसमान से गिरा, अब या तो इसे परिंदे उचक ले जाएंगे या किसी दूर दराज की जगह पर हवा उसको फेंक देगी। ये सुन लिया बौर सुनो कि अल्लाह की निशानियों की जो इज्जत और हुरमत करे, इसके दिल की परहेजगारी की वजह से ही है। ये थी आयत नंबर 27 से 32, 27 to 32। इन आयत का टॉपिक लिखेंगे आसमान से गिरा खजूर में अटका। ये एक बहुत मारूफ मुहावरा है जो हमारे यहाँ बोला जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने जब अपना घर बनाया, और ये इस जमीन के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान था इंसानियत के ऊपर कि अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए एक ऐसा घर बनवा दिया कि जहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन बास लोग जो होते हैं वो एक रब का होने की बजाय बहुत सारों का होना चाहते हैं। ऐसे लोगों का हाल क्या है कि जैसे कोई गिरे आसमान से और उसको हवाएं इधर उधर ले जाएं। आयत नंबर 31 को हाईलाइट कीजिएगा यहाँ से, वमई युश्रिक बिल्लाही फकअन्नमा हर्र मिनस्समाई फतख्तफुहुत्तैर। ये वो मफहूम है जो एक मुशरिक इंसान की मंजरकशी बहुत सही तरीके से करता है, और ये वो लोग होते हैं कि जो एक जगह से उठते हैं तो दूसरी तरह जाते हैं। इसी बात को शायर ने बड़े खूबसूरत शेर में कहा कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से दिलाता है आदमी को निजात। ये भी इसका टॉपिक हो सकता है। देखिए कि एक बंदा है वो सिर्फ रब से मांगता है, उसको लेना है तो उसी से लेना है, और उसको नहीं लेना तो उसी से नहीं लेना। इसके बरक्स एक बंदा है जो दर दर का भिखारी है, इधर जाओ उधर जाओ। कभी आप उन लोगों को बातें करते सुना करें जो कब्रों और दरगाहों पे जाने के आदी होते हैं। लोग जा भी रहे होते हैं ना तो रास्ते में भी बातें कर रहे होते हैं कि देखो अगर यहाँ से फायदा ना हुआ ना तो मुझे बताना, जरा एक और भी है दरगाह, और जरा बस उसके लिए इधर जाना पड़ता है, जरा यहाँ से आ जाओ। ये है एक जगह से क्या दर दर का सवाली, उसको कुछ नहीं मिलता। दो मिसालें दूंगी इस बात को समझने की। एक औरत है, घरों में काम करती है मासियां। कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जो फुल टाइम आपके घर में ही रहती हैं। आपको बताता है कि ये फुल टाइम आपकी मेड है, आप उसकी हर चीज की जरूरत पूरी करना चाहते हैं। जो औरतें घरों में रहती हैं उनके खाने का, उनके पीने का, उनकी ईद पे जोड़ों का, कपड़ों का, और वो मुतमईन होती हैं क्योंकि मालकन को भी पता है कि इसने मुझसे ही खाना है लेके, और इसी तरह बाकी बातें। कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जो बेचारी सारा दिन एक घर से उठी, दूसरे दूसरे से उठी, तीसरे, एक घर बर्तन धोए, दूसरे घर सफाई कर दी। अब होता है क्या कि सुबह भूखी निकली थी कि जाऊंगी तो वहां से खाना मिल जाएगा। पहले घर में गई वो कहेंगी अच्छा अब इतनी सुबह के ये अगले घर से खा लेगी, जब अगले घर में गई वो सोचेगी इसने पीछे से कर लिया होगा, और बाद दफा वो सारा दिन काम करके भूखी प्यासी घर जाती है। जब बंदा एक रब का बनता है ना तो रब उसकी सारी जरूरतें पूरी करता है। उसको बताइए मुझे ही कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा तेरे सिवा कोई राजिक नहीं, मेरा तेरे सिवा कोई दुआओं को सुनने वाला नहीं, फिर अल्लाह ऐसे बंदे को काफी होता है। और जो बंदा दर दर का भिखारी होता है, दूसरी बात एक हदीस सुनाऊंगी, खुलासा है उसका कि एक शख्स जिसको कोई मुसीबत है, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई दुख, कोई दिल को लगी हुई चीज सोच लीजिए, और ऐसा शख्स सुबह को भी पुकारता है तो या अल्लाह, रात को भी पुकारता है तो या अल्लाह, अल्लाह दे दे, अल्लाह दे दे, अल्लाह मेरा तेरे सिवा कौन है, तू ही तो मुझे देगा। इतने प्यार से पुकारता है कि फरिश्तों को उस शख्स के ऊपर रहम आता है। वो अल्लाह ताला से कहते हैं अल्लाह ताला ये बंदा तेरे से तो मांग रहा है और तुझे पता है कि तेरे सिवा किसी से नहीं मांगेगा, तो इसको दे क्यों नहीं देता। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं कि फरिश्तों मैं इसको दूंगा, मैं देना चाहता हूँ, मुझे पता है ये बंदा मुझसे मांग रहा है, लेकिन मैं इसकी इस आवाज को और सुनना चाहता हूँ। तुम्हें क्या पता मुझे कितना मजा आता है जो सिर्फ मुझे कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तू देगा, और आज मैंने इसकी ये हाजत पूरी कर दी तो ये पुकारना छोड़ देगा, मैं इसको और मजा लेना चाहता हूँ, और मजा लेना चाहता हूँ। और इसके बरक्स जब कोई अल्लाह के दर को छोड़ के गैर के दर पे जाता है, अल्लाह को उसकी आवाज से इतनी कराहत आती है कि जो ही वो किसी कब्र वाले का नाम या किसी जिंदा मुर्दा का नाम लेके पुकारता है, अल्लाह ताला फरिश्तों को फौरन हुक्म देते हैं कि इसकी आवाज से मुझे बड़ी कराहत आती है, जाओ फौरन इसका काम कर दो। जैसे वो कुत्ता है ना, उसको हड्डी भी डाल दें तो वो लेके चल पड़ता है, इसको फौरन डाल दो। हाँ, इसके शिर्क का इंतकाम इसके साथ ये लेना कि इसके दिल में ये डाल देना कि मुझे इस कब्र से मिला, चीज लेके आ गए, ईमान बेच के आ गए। और आप देखिए, लोग कहते हैं बस जाने की देर थी, काम ऐसे हुआ, कितने दिन से बीमार था फिर ये हुआ। और दुख और तकलीफ की बात तो तब होती है जब लोग खाना काबा में खड़े हुए ऐसी बातें करते हुए सुने जाते हैं, फलां जगह ले जाओ, फलां जगह ले जाओ। बाज लोग कहते हैं अच्छा पाकिस्तान जाएंगे, फलां कब्र पे अपने इस हैंडीकैप बच्चे को ले जाएंगे, फलां किसी मुश्किल में फंसते हो कहते हैं अच्छा फलां जगह जाके देख दे दो, वहां चावल दे दो। आप देखिए कि जब तक बंदा एक रब का नहीं होता ना, बात नहीं बनती। इस पे बहुत बात हो सकती है, लेकिन यकीन करें ये वो बंदे की दौलत है जो उसको हर चीज से बेनियाज करती है। हम हर रिश्ते में यही चाहते हैं, कोई शौहर ये चाहेगा कि उसकी बीवी उससे मांगने के बजाय उसके दोस्तों से भी मांगना शुरू कर दे, उसके भाइयों से मांगे, उसकी बेइज्जती होगी, उसको लगेगा शायद मैं नहीं देता इसलिए ये दूसरों से मांगती है। आपका बच्चा आपकी दोस्त से ही मांगने लग जाए तो आपको कितनी हया आएगी कि मेरे बच्चे को क्या मैंने नहीं दिया, मेरी इंसल्ट होगी, और कहां फिर शरीक से मांग ले कोई। तो जब हम अल्लाह के सिवा दूसरों से मांगते हैं तो हमारी खुद भी कोई इज्जत नहीं रहती, और वो वही बात है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक दर पे दूसरे दर पे। एक जुमला अपनी जिंदगी में बना लें कि अल्लाह लेना है तो तुझसे लेना है, और नहीं लेना तो भी तुझसे ही नहीं लेना, तू देता है तो दे, तू नहीं देता मुझे किसी से नहीं लेना। यानी जिंदगी में हर बंदे की एक दफा तौहीद का इम्तिहान जरूर होता है, याद रखिए। चाहे माल का नुकसान होगा, चाहे औलाद का गम होगा, चाहे आपको शौहर की तरफ से सताया जाएगा, फिर लोग दोस्त बन के आते हैं, आओ उधर ले जाऊं फुलां बाबा जी, फुलां कब्र वाले। एक साहिब थे, अल्लाह ताला उन पे अपनी रहमतें करें और दर्जे बुलंद करें। किसी मौके पे उनके ऊपर एक झूठा लोगों ने मुकदमा किया और उनकी फैक्ट्री को कब्जे में कर लिया, हक पे थे, खैर दिफा करना था। तो उस वक्त कुछ लोग आते हैं दोस्त, आए चले अब्दुल्ला शाह गाजी लेके चलते हैं, देखना 4 दिन में आपकी फैक्ट्री वापस आएगी। तो उनका जुमला मेरे कानों में गूंजता है कि अल्लाह देना है तो तूने देना है, और अगर अब्दुल्ला शाह गाजी ने देना है तो मैंने नहीं लेना, देगा तो तू दे। और अल्लाह ने वो सब पलटा भी दिया, सिर्फ चंद दिन का इम्तिहान है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि मेरा ये बंदा जो है ये मेरे लिए कितना स्टैंड ले सकता है। अल्लाह ताला हमारी तौहीद को पुख्ता कर दे, जितनी तौहीद पुख्ता होगी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उतनी ही अल्लाह की तरफ से आपकी जिंदगी में बहारें भी आने लगेंगी। एक का बन के देखिए, फिर वो आपका ना बने तो फिर कहिए। सिर्फ ये कि हमारे उसका बनने में कुछ कमी होती है जिसकी वजह से फिर अल्लाह ताला हमें मुश्किलात में डालता है। लकुम फीहा मुनाफियु इला अजल मुसम्मा, इनमें तुम्हारे लिए एक मुकर्रर वक्त का फायदा है, फिर इनके हलाल होने की जगह खाना काबा है, और हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी के तरीके मुकर्रर फरमाए हैं ताकि वो इन छुपाए जानवरों पर अल्लाह का नाम ले जो अल्लाह ने इनको दे रखे हैं। समझ लो कि तुम सबका माबूद बरहक सिर्फ एक ही है, तुम इसी किताबे फरमान हो जाओ। आजजी करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए, कौन होते हैं अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम वस्साबिरीन, इन्हें के जब अल्लाह का किया जाए तो इनके दिल थर्रा जाते हैं, इन्हें जो बुराई पहुंचे उस पर सबर करते हैं, नमाज कायम करने वाले, और जो कुछ हमने इनको दे रखा है वो इसमें से भी दे देते हैं। कुर्बानी के ऊंट हमने तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की निशानियां मुकर्रर कर दी हैं, इसमें तुम्हें नफा है, बस इन्हें खड़ा करके इन पर अल्लाह का नाम लो। बस जब इनके पहलू जमीन से लग जाए इसे खुद भी खाओ और मिस्कीन सवाल से रुकने वालों और सवाल करने वालों को भी खिलाओ। इसी तरह हमने चौपायों को तुम्हारे मातहत कर दिया ताकि तुम शुक्रगुजारी करो। अल्लाह को कुर्बानियों के गोश्त नहीं पहुँचते ना इनके खून, बल्कि इससे तो तुम्हारे दिल की परहेजगारी पहुँचती है। इसी तरह अल्लाह ताला ने इन जानवरों को तुम्हारा मती कर दिया है ताकि तुम इसकी रहनुमाई के शुक्रिये में इसकी बड़ाइयाँ बयान करने लगो। ये थी आयत नंबर 33 से 37, 33-37। इन आयात का टॉपिक है आजजी करने वालों की खूबियाँ, हाईलाइट करेंगे आप भी इंशाल्लाह ताला। आयत नंबर 35 से 34 के एंड पे थे ना मुखबतीन का लफ्ज, इसी की डिस्क्रिप्शन है। पहली क्या है कि जब अल्लाह का जिक्र इनके सामने किया जाए तो डर जाते हैं, इनके दिल डरने लगते हैं, फिर सब्र करने वाले जो इनको मुसीबत पहुंचे, फिर नमाजों को कायम करने वाले, और जो रिस्क हमने उनको दिया इसको खर्च करने वाले। आप देखिए कि किसी शख्स को आप अल्लाह ताला की तरफ से कोई बात कहें और वो उसके ऊपर अकड़ने लगे, ये उसके दिल के तकवे से खाली होने की दलील है। एक मौके पे किसी ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो से कहा कि ऐ उमर अल्लाह से डर जा, इत्तकिल्ला। इस बात को सुन के आपके ऊपर इतनी खशियत तारी हो गई कि आप जमीन के साथ अपना गाल चिपका के रोने लगे, कि तूने मुझे इतने बड़े का डर दिया। इसके बरक्स जब दिल तकवा और ईमान से और आजिज़ी से खाली होता है ना, तो आप किसी को अल्लाह की बात से डराएं तो वो कहते हैं छोड़ो अपनी बातें अपने पास रखो, तुम अपनी फिक्र करो, मेरी ज्यादा फिक्र ना किया करो। अगर किसी को आप इस दर्जे पे अल्लाह के दीन की बात सुन के झगड़ता हुआ देखे ना, तो फौरन समझ जाए कि अभी इसके लिए तकवा की दुआ करने की जरूरत है कि अल्लाह इसके दिल में अपना खौफ पैदा कर दे। एक शख्स सिर्फ इस एक जुमले को सुन के अपनी सारी जिंदगी के गुनाहों से तायब होकर अल्लाह की नजरों में प्यारा हो गया था, उसका नाम किफिल था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका किस्सा कई बार सुनाते थे। बनी इसराइल का एक शख्स था जिसको आज के दौर का बदमाश शख्स कहें वही होगा, लोगों की जरूरतों से फायदा उठाता, मजबूरियों से फायदा उठाता। एक तो औरत एक दफा उसके पास आई, कुछ माल का तकाजा किया, 60 दिरहम थे या दिनार। कहा ठीक है दे दूंगा, बस मेरी ख्वाहिश पूरी करो, एक रात के लिए मेरी बात मान लो। कितनी मजबूर थी बात उस वक्त मान गई, लेकिन जब ऐन वो कैफी थी जिस वक्त वो शख्स अपनी ख्वाहिश पूरी करता तो वो औरत हदीस में आता है कि पत्ते की तरह कांप रही थी, लरस रही थी, कहने लगी या किफल इत्तकिल्ला, ए किफल अल्लाह से डर जाओ। कहने लगा तुम क्यों डरती हो, तुम तो मजबूर हो और मैं ये गुनाह हर रोज करता हूँ, मैं तो नहीं डरता। कहने की उस मोहर को मत तोड़ो जो अल्लाह ने रखी है। उस जुमले ने किफल के दिल की दुनिया बदल दी कि अल्लाह से डरू, ये कैसी औरत है, अल्लाह का डर दिला रही है। उसको छोड़ दिया, पैसे भी दिए। उसके बाद किफल था और उसका रब था, रो रो के तौबा की कि अल्लाह मुझे क्या हुआ, मैं कभी तुझसे ना डरा। और उसी रात किफिल का इंतकाल हो गया। सुबह बस्ती में खबर फैल गई कि किफिल मर गया। लोग इस सोच से उसके घर की तरफ दौड़े कि देखें जरा इसको जहन्नुम की किस वादी में अल्लाह ने फेंका, क्योंकि उस दौर में दरवाजों पर लिखा जाता था जब कोई शख्स मरता था कि वो जन्नती है या जहन्नुमी है। और जब लोगों ने उसके दरवाजे पे देखा, इन्नल्लाह कद गफर किफला, अल्लाह ने किफिल को माफ कर दिया। ये क्या चीज थी, अल्लाह का खौफ। वजीलत कुलूबुहुम, आप अपने दिल का जायजा लिया करें, मेरे दिल की हालत क्या होती है। देखिए जब तक कोई हमें नसीहत ना करे और बात होती है, हम अपने नफ्स के तकाजों में उलझे रहते हैं, लेकिन जब हमें दिन रात अल्लाह के कलाम की बातें और अल्लाह का डर हमारे दिलों के अंदर बिठाया जाए, तो उस वक्त अगर हमारा दिल नहीं आता तो समझ लीजिए कि जब दिल सख्त हो जाते हैं तो फिर बाकी सब कुछ भी खराब होने लगता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि अला फिल जसद मुदगा, बेशक जिस्म एक टुकड़ा है, अगर वो ठीक हो गया तो सारा जिस्म ठीक होगा और वो दिल है, दिल ठीक कर लेंगे इंशाल्लाह बाकी सब कुछ भी ठीक होने लगेगा। दूसरी चीज इस आयत के अंदर आप हाईलाइट भी करेंगे और दूसरा टॉपिक इन आयत का आप लिखेंगे, अल्लाह को तुम्हारे दिलों का तकवा पहुँचता है। आयत नंबर 37 में से ये आप हाईलाइट कर सकते, वला की यना लहुत तकवा मिनकुम। हर साल जब ईद कुर्बान आती है तो हम लोग कुछ कुर्बानियां करते हैं और कुछ इस तरह से बकरे और सब कुछ होता है। बस दफा लोग ये सब कुछ करके अपने आप को मुतमईन कर लेते हैं कि इस साल 3 कुर्बानियां की, 4 की। बस दफा ये एक स्टेटस सिंबल भी बनने लगता है जिसकी वजह से इंसान अपने आप को बहुत ही ज्यादा दूसरों की नजरों में बड़ा करने लगता है। असल चीज जो अल्लाह को मिलती है वो तकवा मिलता है। तकवा क्या होता है कि इंसान अल्लाह से कितना डरता है। सूरत मायदा में भी हम हाबील और काबील के किस्से में पढ़ चुके हैं कि इन्ना मयतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, कि अल्लाह मुत्तकियों की कुर्बानियां कबूल करता है। अब रमजान है, 2 महीने के बाद इंशाल्लाह कुछ दिन ऊपर करके एक मौका आएगा जो कुर्बानी का मौका होगा। आज इस आयत के ऊपर आप अपने आप से एक अहद करें कि इस साल कुर्बानी करने से पहले पहले मैंने अपने अमल के अंदर हर वो चीज लानी है जो मेरी उस कुर्बानी को कबूल कराए। देखिये कि बाज दफा हम अल्लाह की नाफरमानियों के रिस्क को हासिल करके फिर उसी से अल्लाह को खुश करना चाहते हैं, बाज दफा हम दिखावे के लिए और दूसरों के लिए करना चाहते हैं। नतीजा क्या होता है कि वो अल्लाह की निगाहों में तो नहीं बात बनती लेकिन लोगों की निगाहों में बनने लगती है। किसी दूसरे के ऊपर तनकीद करने की बजाय अगर इंसान अपने ऊपर चेक कर ले तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उसको रास्ते खुद बखुद दिखाएगा। अगली आयत बहुत ही खूबसूरत है, फरमाएफर सुन रखो, यकीनन सच्चे मोमिनों के दुश्मनों को खुद अल्लाह ताला हटा देता है, कोई खयानत करने वाला न शुक्र अल्लाह ताला को हरगिज नहीं। आयत नंबर 38 है, इसका उन्वान है तुम मोमिन बनो, दिफा करना अल्लाह की जिम्मेदारी है। बहुत खूबसूरत आयत है, अल्लाह ताला ने मोमिनों के दिफा की बात की। फ्रूट्स ऑफ ईमान में एक फ्रूट क्या है कि अल्लाह ताला से बंदे को बचा लेता है। आज हर तरफ इस चीज का शोर गुल है कि मुसलमानों के हालात खराब हैं, ईमान वालों को बड़ी मुश्किलें हैं, ये करें तो ये पकड़ होती है, ये करें तो वो पकड़ होती है। ये सब चीजों का ताल्लुक हमारे ईमान से है। आपके दिल में जितनी अल्लाह की मदद और अल्लाह की सच्चाई का यकीन होगा ना, अल्लाह ताला उतनी ही आपकी मदद करेगा। सारी दुनिया दूसरे मुकाबले में हो और उसके आगे सिर्फ अल्लाह को देखिए, इन्नल्लाह युदाफियु, अल्लाह ताला ने दिफा के लिए अपनी बात پیش کی کہ میں دفاع کرتا ہوں، یہ بھی نہیں کہا کہ ہم دفاع کرتے ہیں فرشتوں کے ذریعے یا جبرائیل کے ذریعے یا میکائیل کے ذریعے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ جو ہیں آپ کے مقابلے پہ آ جائیں، اگر ایک رب آپ کا دوست بن جائے تو وہ سب کے مقابلے میں آپ کو کافی ہوگا انشاءاللہ تعالی، لیکن اس کے لیے ہمیں ڈیزرو کروانے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمان ہر جگہ پٹ رہے ہیں، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اللہ ایمان والوں کا دفاع کر رہا ہے؟ آج دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں، آج بہت حالات پہ نظر بھی رکھی جاتی ہے، لیکن دفاع کیوں نہیں؟ کیونکہ ایمان اس درجے کا نہیں جو درجہ غزوہ بدر کے موقع پہ تھا کہ فرشتے آسمانوں سے اترے تھے، آج بھی اتر سکتے ہیں۔ اللہ نعوذ باللہ کوئی ہاتھ اس کے تھکے نہیں، آج اللہ کے لشکر کم نہیں ہوئے، آج بھی دشمن سب کے سامنے مارے جائیں گے۔ اب دیکھیے اللہ نے دفاع کیا ابراہیم علیہ السلام کا، جس شخص نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانا چاہا نمرود، اللہ نے اس کو کہاں سے مارا؟ ایک مچھر کے ساتھ مقابلے پہ آ گیا کہ اچھا جاؤ اپنے رب سے کو اپنی فوجیں لے آئے، میں اپنی فوجیں لاتا ہوں۔ کتنا عرصہ تیاری کرتا رہا، اور جب موقع آیا تو کہا ٹھیک ہے، پہل کون کرتا ہے؟ کہا اللہ کی طرف سے کیا ہوگا، اپنی ساری وہ فوجیں لے آیا، اور اس کے مقابلے میں اللہ نے صرف ایک قسم کی فوج ابھی بلائی تھی، اور وہ مچھروں کی فوج تھی۔ چند منٹ میں اتنے مچھر آ گئے کہ کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی زمین پہ پہنچنی ختم ہو گئی، اور چند منٹوں میں اس کی فوج کو چاٹ کے رکھ دیا، ہڈیاں اور گوشت الگ ہو گیا۔ اسی میں سے ایک مچھر اس کے ناک میں گھسا تھا، اور اس کی وجہ سے اس کے سر میں اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ سر پہ جوتوں سے اپنے آپ کو پٹواتا تھا۔ کتنا عرصہ وہ مچھر اس کے ناک میں رہا، اور بالآخر پھر اسی سے مرا۔ اللہ تو دشمنوں کو چیونٹیوں اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مرواتا ہے، اللہ کو کوئی بہت بڑی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ نے وہاں مدد کی، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے کیسے نکالا، بنی اسرائیل کا دفاع کیسے کیا۔ انبیاء کرام کی ہسٹری کو آپ سامنے کھول کے دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ بات آ جائے گی کہ جتنا ایمان پختہ ہوتا ہے اتنا ہی اللہ کی طرف سے دفاع زیادہ ہوتا ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا رب وقت اللہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے اور گرجے اور مسجدیں اور یہودیوں کے معبد خانے اور وہ مسجدیں بھی ڈھا دی جاتی جہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے۔ جو کوئی اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا اور بڑے غلبے والا ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں گے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور مدین والے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکے۔ بس میں نے کافروں کو یوں ہی سی مہلت دی، پھر دھر دبایا، پھر میرا عذاب کیسا ہوا؟ بہت سی بستیاں جن کو ہم نے تہوالا کر دیا اس لیے کہ وہ ظالم تھے، بس وہ اپنی چھتوں کے بل اوندی ہوئی پڑی ہیں، اور بہت سے آباد کنویں بیکار پڑے ہیں، اور بہت سے پکے اور بلند محل ویران پڑے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی؟ جو ان کے دل ان باتوں کے سمجھنے والے ہوتے یا کانوں سے ہی واقعات کو سن لیتے تو بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 39 سے 46، 39 سے 46۔ اس کے دو ٹاپک ہم لکھیں گے۔ پہلا ٹاپک ہے بالآخر جہاد کی اجازت ملی۔ اسی نہ والی جو آیت ہے یہ قرآن پاک کی وہ پہلی آیت ہے کہ جس موقع پہ مسلمانوں کو کافروں سے جہاد کی اجازت ملی تھی، مکہ میں سے 13 سال گزرنے کے بعد جب مدینہ میں آئے تو پھر اجازت دی کہ اب تم بدلہ لے سکتے ہو، اور اس کی بھی وجہ بتا دی کہ دنیا سے فتنے کا خاتمہ، اور فتنہ کیا ہے کہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف آنے سے روکنا اور اس کی عبادت کرنے کے اوپر لوگوں کو تکلیفیں اور سزائیں دینا۔ دوسرا ٹاپک لکھیے گا اس میں اللہ کی مدد کا مستحق بننے کی شرائط۔ یہ کہاں ہے؟ یہ ہے آیت نمبر 41 میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم ان کو زمین میں جگہ دیں، کیا شرطیں اللہ کی مدد کسی حکومت کسی ملک کے ساتھ کب آتی ہیں؟ جب وہ نمازوں کو قائم کریں، زکوٰۃ دیں، نیکیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ آج بھی اگر کوئی اللہ کی مدد لانا چاہتا ہے تو جب کبھی کسی مسلمان کو حکومت ملے تو پھر اس کو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ جتنا یہ کرتے جائیں گے اتنی ہی اللہ کی مدد جو ہے انسان کی طرف آنے لگے گی۔ تیسرا ٹاپک آپ ان آیتوں میں لکھیں گے آنکھیں نہیں دل اندھے ہوتے ہیں۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیجیے، آیت نمبر 46 میں ہے فَإِنَّمَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ अल्लाह अकबर, ये है अल्लाह का वो इंतकाम कि जब एक बंदा अपने दिल से हिदायत का काम नहीं लेता, दिल को अल्लाह की मोहब्बत में चूर नहीं करता, तो अल्लाह उसके दिल को अंधा कर देता है। फिर आंखें रखते हुए उसको कुछ नहीं दिखता, वो कायनात में फैली हुई निशानियों को देखता लेकिन अंधे बहरों की तरह गुजर जाता है। और ऐसा शख्स जो है वो दिल की आंखों को बंद कर ले तो सर की आंखें भी उसको फायदा नहीं देती। जरूरत है इस बात की कि इंसान वाकई अपने दिल को जिंदा रखे। देखिए कि जैसे जिस्म की खुराक है ना, हम खाना खाते हैं, पीते हैं, कभी कोई वाइटामिन चाहिए, कभी कुछ, डॉक्टर से पूछें आपको फौरन बता सकते हैं कि आपकी बॉडी की क्या क्या नीड्स हैं। इसी तरह दिल की नीड भी होती है। अगर दिल को वो खुराक ना दी जाए तो दिल मुर्दा होता है। और दिल की खुराक क्या है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिल की खुराक अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की याद। बंदा जितना अल्लाह की याद में जिएगा उतना ही उसका दिल जिंदा होगा। हम जब कुरान की या कलाम की मजलिस में बैठते हैं तो ये हमारे दिलों को खुराक मिल रही होती है, हम अपने दिल को एक स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, इसके अंदर खून पंप करता है, कभी जोश आने लगता है, कभी दिल हाथ पांव ठंडे होने लगते हैं, एक नेचुरल प्रोसेस है। इसी तरह हमारे दिलों की खुराक है कायनात पे तदब्बुर। आप जब जिस तरह इस 2-3 घंटे में अपने दिल को बंधा हुआ पाते हैं अल्लाह की बात का, ये कैफियत आपकी 24 घंटे भी रह सकती है। कब? आप जब बाहर निकल के गौर करते हैं सूरज को, चांद को, सितारों को, ये किसके लिए खड़े हैं, ये किसके हुक्म के बंधे हुए हैं। जितना तदब्बुर करते जाएंगे और जितना इस किताब को पढ़ते जाएंगे उतना आपका दिल सेहतमंद होगा। और वो सेहत जो है वो दुनिया की किसी और चीज से इंसान को मिल ही नहीं सकती। फिर आगे फरमाया, वयस्ताजिलूनक बिल अज़ाब, और अज़ाब को आपसे जल्दी तलब कर रहे हैं। अल्लाह ताला हरगिज़ अपना वादा नहीं टालेगा। हाँ, अलबत्ता आपके रब के नजदीक एक दिन तुम्हारी गिनती के एतबार से 1,000 साल का है। बहुत सी जुल्म करने वाली बस्तियों को मैंने ढील दी, फिर आखिर इनको पकड़ लिया और मेरी ही तरफ लौट कर आना है। ऐलान कर दो के लोगों, मैं तुम्हें खुल्लम खुल्ला चौकन्ना करने वाला हूँ। बस जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, इन्ही के लिए बख्शिश और इज्जत वाली रोजी है। और जो लोग हमारी निशानियों को पस्त करने के दर पे रहते हैं वही दोस्ती है। हमने आपसे पहले एक जिस रसूल और नबी को भेजा, इसके साथ ये हुआ कि जब वो अपने दिल में कोई आरजू करने लगा तो शैतान ने इसकी आरजू में कुछ मिला दिया। बस शैतान की मिलावट को अल्लाह ताला दूर करता है, फिर अपनी बातें पक्की कर देता है। अल्लाह ताला दाना और बाहिकमत है। ये इसलिए कि शैतानी मिलावट को अल्लाह ताला इन लोगों की आजमाइश का जरिया बना दे जिनके दिलों में बीमारी है और जिनके दिल सख्त है। बेशक जालिम लोग गहरी मुखालफत में है। और इसलिए भी कि जिन्हें इल्म अता किया गया वो यकीन कर ले कि यह आपके रब की तरफ से सरासर हक है, फिर वो इस पर ईमान लाए और इनके दिल इसकी तरफ झुक जाए। यकीनन अल्लाह ताला ईमानदारों को राह रास की तरफ रहबरी करने वाला ही है। ये थी आयत नंबर 47 से 54, 47 से 54। इन आयत का टॉपिक लिखिए, शैतान की ख्वाहिश तुमको इधर उधर बहका दे। यहाँ शैतान का एक ऐसा प्लान अल्लाह ताला ने हमारे सामने रखा, और वो क्या है कि जब बंदा सच्चे दिल से फोकस होकर अल्लाह के दीन की तरफ आने लगे तो उसकी तवज्जो को बदला दे और इस वक्त उसको इधर उधर की चीजों में इस तरह से उलझा दे कि जिसके बाद फिर उस बंदे को अल्लाह की बात के करने और कराने के अंदर वो इत्मीनान न मिले जो कि उसको मिल सकता था। अब देखिए कि अल्लाह ताला ईमान वालों को राह रास्त दिखाता है, उनको सिराते मुस्तकीम दिखाता है। इसका मतलब क्या है कि जो लोग सच्चे ईमान वाले होते हैं वो इधर उधर फैली हुई बातों से मुतासिर नहीं होते और वो लोगों की बातों में नहीं आते। ऐसे लोग जब अपने दिल को अल्लाह के कलाम से एक दफा जोड़ लेते हैं तो उसके बाद फिर उनको कोई चीज उससे रोक नहीं सकती। इसके बरक्स वो लोग जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रेक्टेड होते हैं, जो फोकस नहीं होते, ऐसे लोगों को शैतान कई दफा खेलता है। रिवायात में आता है कि शैतान बंदे के दिल के साथ खेलता है, और उस रिवायत को पढ़ते हुए मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे कोई बॉल के साथ बच्चा खेलता है ना, इधर उछालता है उधर उछालता है। इस तरह ये शैतान जो ना ये हमारे दिल से खेलता है। और आपको शायद ये भी बात मालूम होगी कि शैतान हमारे दिल में रहता है, यानी इसका घर जो होता है ना वो दिल है। हदीस में आता है कि शैतान इंसान के जिस्म में खून में गर्दिश करता है और जब दिल से गुजरता है तो वहां वसवसे डालता है। इंसान को इस तरह डाल देता है कि जैसे उसको पता ही नहीं चलता, और ये पूरा काम नहीं करता, सिर्फ एक आइडिया दे के आगे गुजर जाता है। आज जो लोग साइंस को जानते हैं उनको पता है कि हमारे बॉडी में जिस्म में खून कितनी तेजी से गर्दिश करता है, इतना सख्त प्रेशर होता है, जो आपका ब्लड प्रेशर है उसी के जरिए से ब्लड दिन में कई बार आपके दिल से गुजरता है। अगर उस एक लम्हे में दिल को उसने जो आपके पकड़ा, अगर आप अपने दिल को वहां जमा लेंगे ना तो आप देखेंगे कि उसकी बात पे औज़ुबिल्लाह पढ़ देंगे तो बाकी कई घंटे तक आप महफूज होंगे। सारा दिन बंदे को बुराई का ख्याल नहीं आता, कोई एक छोटे से लम्हे में आता है, फिर ये अलग बात है कि आप उसको करने लग जाए और उसके ऊपर आपको कितने घंटे लगे। जो लोग उस चीज को महसूस करें, कभी किसी वक्त कोई ख्याल आए ना, लोग बैठे थे कहते हैं आइडिया, वो जो आइडिया होता है ना वो अक्सर शैतान का होता है। अगर उस वक्त आप अपने आप को जमा लेना, औसु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, कोई आइडिया नहीं, अब देखिए आप बिल्कुल सीधे होकर बैठ जाएंगे, फिर कई घंटे गुजर जाते हैं, दोबारा जब वो दिल में गुजरता है फिर कोई वसवसा डालता है। तो जितना हम कॉन्शियस रहेंगे, केयरिंग होंगे ना, उतना इंशाल्लाह ताला आप फिर महसूस करेंगे कि शैतान के इन हमलों से आप अपने आप को महफूज पाएंगे अल्लाह की तौफीक से और उसकी रहमत से। वला यज़ालुल्लज़ीना कफरू, काफिर इस वही इलाही में हमेशा शक व शुबा ही करते रहेंगे, हत्ता कि अचानक इनके सरों पर क्यामत आ जाएगी या इनके पास इस दिन का अजाब आ जाएगा जो मनहूस है। उस दिन सिर्फ अल्लाह ही की बादशाहत होगी, वो इनमें फैसले फरमाएगा। ईमान और नेक अमल करने वाले तो नेमतों से भरी जन्नत में होंगे, और जिन लोगों ने कुफर किया और हमारी आयतों को झुठलाया इनके लिए जलील करने वाले अजाब हैं। इसके बरक्स वल्लज़ीना हाजरू फी सबीलिल्लाह थुम्मा कुतिलू व मातू, और जिन लोगों ने राहे खुदा में तरके वतन किया फिर वो शहीद कर दिए गए या अपनी मौत मर गए, अल्लाह ताला इनको बेहतरीन रिस्क अता फरमाएगा, और बेशक अल्लाह ताला रोजी देने वालों में सबसे बेहतर है। इन्हें अल्लाह ताला ऐसी जगह पहुँचाएगा कि वो इससे राजी हो जाएंगे। बेशक अल्लाह ताला इल्म और बुर्दबारी वाला है। अल्लाह हमें भी ऐसी जगह पे पहुँचा दे। बात यही है, और जिसने बदला लिया इसी के बराबर जो उसके साथ किया गया, फिर अगर इससे ज्यादती की जाए तो यकीनन अल्लाह ताला खुद इसकी मदद फरमाएगा। बेशक अल्लाह ताला दरगुजर करने वाला बख्शने वाला है। ये इसलिए कि अल्लाह रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और बेशक अल्लाह ताला सुनने और देखने वाला है। ये सब इसलिए कि अल्लाह ही हक है, और इसके सिवा जिसे भी ये पुकारते हैं वो बातिल है, और बेशक अल्लाह ही बुलंदी वाला और किबरियाई वाला है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ताला आसमान से पानी बरसाता है, बस जमीन सर सब्स हो जाती है? बेशक अल्लाह ताला मेहरबान और बाखबर है। आसमान और जमीन में जो कुछ है उसी का है, और यकीनन वही बेनियाज तारीफों वाला है। अलम तरन्नल्लाह खसखर अलकुम मा फिल अर्द, क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ही ने जमीन की तमाम चीजें तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी हैं, और इसके फरमान से पानी में चलती हुई कश्तियां भी? वही आसमान को थामे हुए है कि जमीन पर इसकी इजाजत के बगैर गिर ना पड़े। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर शफकत और नरमी करने वाला मेहरबान है। इसी ने तुम्हें जिंदगी बख्शी, फिर वही तुमको मार डालेगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा। बेशक इंसान अलबत्ता बड़ा नाशुकरा है। ये थी आयत नंबर 55 से 66, 55 to 66। इसके टॉपिक लिखेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स हैं इसके। पहला टॉपिक है आयतों को झुटलाना, अपनी बेबसी की दलील देना है। जब भी अल्लाह ताला अपने दीन को लोगों के सामने पेश करता है और लोग उसको हक समझते हुए भी झुटला देते हैं ना, तो ज़रूर ही उसके अंदर उनकी कोई ज़ाती कमज़ोरी होती है। हक कुरान की सूरत में भी सामने आता है और हक कायनात की सूरत में भी आता है। ऐसे लोगों को अल्लाह से बड़ी शदीद मदद मांगनी चाहिए कि अल्लाह हक को झुटलाने की तौफीक न देना। कभी हक आ जाए तो उसको कबूल करने के लिए मैं सबसे पहले आगे चली जाऊँ। दूसरा टॉपिक हम इन आयात का लिखेंगे, ईमान सबसे कीमती चीज़। ये है आयत नंबर 58 से 59 का टॉपिक। यहाँ अल्लाह ताला ने फिर हिजरत की बात हमारे सामने रखी। हकीकत ये है कि जो चीज़ इंसान से अल्लाह ताला को मतलूब है वो कुर्बानी है। जो ईमान सच्चा ईमान होता है वो कभी भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटता, और जो ईमान कुर्बानी वाला होता है उसको उस रास्ते में कुछ भी छोड़ना पड़े तो वो उससे पीछे नहीं हटता। वतन छोड़ना पड़े तो छोड़ेगा, उसको अपनी ख्वाहिशात छोड़नी पड़े, अपनी आदात छोड़नी पड़े, अपने रस्म व रिवाज छोड़ने पड़े तो छोड़ने के लिए तैयार होगा, और इस तरह वो ईमान के साथ बंधा रहता है। लेकिन एक दफ़ा अगर इन चीज़ों को छोड़ने की बजाय इन्हीं के साथ लगे रहे तो जो रिश्ता टूटता है वो ईमान का रिश्ता टूटता है, और दुनिया में एक इंसान की सबसे कीमती मता उसका ईमान है, क्योंकि ये दलील बनती है उसके जन्नत में जाने की और अल्लाह ताला उससे राजी होने की। तो लिहाजा जिंदगी में कभी कोई ऐसी चीज आपके सामने आए जहां आपको मुश्किल पेश हो तो फौरन अल्लाह ताला से मदद मांगे। अब देखिए कि एक इंसान बहुत कमजोर होता है। हमारी जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं कि हम अपने आप को टूटता हुआ महसूस करते हैं। हम बहुत कमजोर हैं, हम स्टैंड नहीं ले सकते, हमें लगता है नहीं इट्स टू मच, आई कैन डू इट। ऐसे वक्त में आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी। कभी आपने कोई पतली सी बेल जमीन पे फैली देखी हो, आप उसको खड़ा करें ना तो वो खड़ी नहीं होती, गिर जाती है ना। फिर आप क्या करते हैं कि एक धागा लेके उसको बांध के फिर ऊपर तीसरी चौथी मंजिल पे उस धागे को बांध देते हैं, फिर क्या होता है? कुछ दिनों के बाद वो बेल ऊपर चढ़ जाती है। यही आपकी और रब की ताल्लुक की कैफियत है। आप एक कमजोर सी बेल हैं, आपके दिल में ईमान का एक छोटा सा बीज लग रहा है। आप एक आंख से रोते हैं, एक से हंसते हैं। आप कहते हैं क्या खोया क्या पाया, कहाँ थे, चलो थोड़ी बात करते हैं। जो ही आप देखते हैं लोग आपके ऊपर बस शुरू हो जाते हैं, ये क्या हो गया, अब ये क्या नई बात शुरू हो गई, ये क्या मसला है भाई, व्हाट्स न्यू, ये क्या, ये कोई नया फैशन शुरू हुआ, ये क्या हो गया आपको, बस आप फिर बैठ जाते हैं, आप ऐसे सो जाते हैं जैसे बेल सोती है। नहीं, एक चीज आपको उठाएगी और वो आपका अल्लाह के साथ ताल्लुक है। एक दफा बंदा अल्लाह के साथ ताल्लुक पैदा कर लेता है ना, तो आप देखिए कि फिर अल्लाह उसको उठाता है कोई तरीके का, और अल्लाह से ताल्लुक जुड़ता है उसकी किताब के जरिए, नमाजों के जरिए, उससे ताल्लुक के जरिए, और फिर आप इतना ऊपर उठते हैं। एक छोटी सी एक्टिविटीज पे अगर आपके साथ करूं तो आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन को काम पे लाना होगा। मैं एक जीरो लगाती हूँ, इसकी कोई वैल्यू है, एक और जीरो लगाऊं, कोई वैल्यू है, ये तीसरा जीरो है, कोई वैल्यू है, कुछ नहीं है ना। आप 10 जीरो भी लगा लेंगे तो सब जीरो एक जैसे हैं, और अगर मैं यहाँ एक लगा दूं अब क्या हुआ, ये देखिएगा, आप एक जीरो थे, एक लगा, आप 2 जीरो हुए। हम कहते हैं ना कि अल्लाह की मदद आए और आती नहीं, पता नहीं मेरे तो हालात ही नहीं ठीक, मेरे तो घर वाले ही नौजबिला कैसे हैं। असल बात क्या होती है कि जब हम खड़े होते हैं ना, मतलब मैं स्टैंड ले लिया मैंने अल्लाह के रास्ते में कि नो इन अल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, अब ये मैं एक हूँ, मैं खड़ी हूँ। जब मैं अभी शुरू में खड़ी होती ना तो अल्लाह ताला अपनी मदद का एक जीरो लगा देता है। अल्लाह हमारी जितनी भी मदद करे ना, अल्लाह के खजानों के आगे वो जीरो है। अब मेरी एक और अल्लाह की मिलके ये 10 हो गए ना, मैं थोड़े दिन और खड़ी रहती हूँ, अल्लाह ताला एक और जीरो लगा देता है, जीरो। आपकी ताकत कब बढ़ती जाती है, अल्लाह आपकी मदद कब करेगा, जब आप खड़े हैं। अब ये सारी मदद थी और आप गिर जाएं, बात वाजे। हम जब अल्लाह के रास्ते में स्टैंड लेते हैं ना, तो फिर अल्लाह अपनी मदद के जीरो पे जीरो बढ़ाता जाता है, और अगर हम गिर जाएं वो सारी मदद गिर जाती है। आज भी अल्लाह ताला मुसलमानों की इनफरादी और इज्तमाई तौर पे मदद करना चाहता है, लेकिन जब हम गिरे होते हैं ना, जब हम कोलैप्स हो जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला हमारी मदद नहीं करता। तो इसके लिए इंसान जितनी अल्लाह से मदद लेना चाहता है उतनी इस्तकामत दे। हम एक कदम चलेंगे ना तो वो 10 कदम, हम चल के आएंगे तो वो दौड़ के, हम भाग के आएंगे तो वो हमें थामने को तैयार है। लेकिन जब हमारे अंदर इस्तकामत नहीं रहती, तो फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो आज मुसलमानों का हाल हो रहा है।